ओम शांति। कल बाबा की मुरली के बाद जो वरदान सुना, कम खर्च बाला नशीन, तो विचार चला कि इस पर क्लास ले, खर्चा भी कम हो और सफलता भी ज्यादा मिले। इसमें तीन बातें आती है। कई बार खर्चा बहुत ज्यादा होता है तब जाकर के सफलता मिलती है, पर दूसरी बात खर्चा ज्यादा होता है पर सफलता कम मिलती है, और तीसरी बात है कि खर्चा भी कम हो पर सफलता ज्यादा हो। तो तीनों में से कौन सी बात ऊंची होगी? तीसरी बात, खर्चा ज्यादा हो और फिर जाके सफलता हो, तो खर्चा तो बहुत कर लिया वैसे ही, तब जाके सफलता मिले, और दूसरा खर्चा बहुत किया पर सफलता मिली नहीं, और तीसरा खर्चा भी कम किया पर सफलता बहुत ज्यादा मिली। तो तीनों में से कौन सा पसंद करेंगे? तीसरा नंबर का। तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। वैसे देखा जाए सब कुछ हमारे लिए इस संगम युग पर बहुत महत्व का है, क्योंकि संगम युगी जीवन ही महत्व का है, जो कल्प में एक ही बार परमात्मा के हम डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, परमात्मा के हम डायरेक्ट विद्यार्थी बनते हैं। तो डायरेक्ट पल पालना भी मिल रही है, पढ़ाई भी मिल रही है और प्राप्ति भी मिल रही है। तो ऐसा यह अमूल्य जीवन है हम ब्राह्मणों का, और जब तक ब्राह्मण नहीं बने थे तब तक तो हमारा ये जीवन कौड़ी के समान था, और जैसे बाबा के बने यह जीवन हीरे समान बन गया। तो ऐसा हीरे समान जीवन का हम कितना कदर करें ये हम जरूर सोचें। मनुष्यों के जीवन का तो कोई कदर है ही नहीं सचमुच, इसीलिए कबीर को भी कहना पड़ा, हीरा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए रे। तो वो तो समझते हैं 84 लाख योनियां मिलती है फिर मनुष्य जन्म मिलता है, इसीलिए हीरे समान है, और बाबा कहते नहीं 84 जन्म मैक्सिमम है पर उनमें ये जन्म हीरे तुल्य है, क्योंकि इस जन्म में हम पूरे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हैं। इसी जन्म में भगवान का हमें साथ है, भगवान हमारा सच्चा साथी बन जाता है और कहता है कि जो चाहिए वो मुझसे ले सकते हो, जितना चाहिए मुझसे ले सकते हो, और सौदा बहुत सस्ता है, तुम देते क्या हो और लेते क्या हो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, मैं सौदागर हूं, क्या तुम्हारे से लेता हूं? तुम्हारी कमियां, कमजोरियां, विकार, ये सारी विकृतियां और उसके एवजे में तुम्हें क्या देता हूं, सोचो तो सही। अगर हम अपना तन भी बाबा की सेवा में देते हैं तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इतना उज्जवल पवित्र कंचन काया दूंगा, निरोगी काया, अमृतत्व का वरदान दे दूंगा। अगर मन भी मुझे देते हो तो ये मन मैं इतना शुद्ध पवित्र बना देता हूँ, जो इस मन में सदा खुशी, सदा प्रेम, सदा शक्ति भरी रहेगी। अगर तुम मुझे धन भी देते हो तो ये जो विकारी धन है, विनाशी धन है, उसके रिटर्न में मैं तुम्हें इतना माला माल कर देता हूँ जो तुम दो युग तक खाते रहते हो। तो ये तन मन धन तो बाबा कहते हैं मेरा समझो और रखो अपने पास, ट्रस्टी होके रहो, मेरा समझ कर इसको यूज करो, तो इसका रिटर्न बहुत बहुत ऊंचा, हजार लाख पदम गुना ऊंचा आपको मिलेगा। परंतु इसके साथ साथ जो और हमारे खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, श्वास, संकल्प, ये सब जो हमारे खजाने हैं, इनको भी कैसे बाबा के अर्थ लगाओ तो ये भी पदम गुना होकर के रिटर्न में मिलेगा। भक्ति मार्ग में तो तुमने इनडायरेक्ट दिया, अभी मैं डायरेक्ट आया हूं, इसका एवजा बहुत ज्यादा है। लेकिन उसमें पहले कौन दे, हम दे या बाबा दे, कौन पहले दे? हम लेने वाले हैं या देने वाले हैं, पहले कौन दे, पहले हम दे या बाबा हमको दे? जी पहले हम दे या पहले बाबा दे? पहले हम दे। वैसे भी कहावत है, तुम एक कदम आगे आओ, माना एक कदम अपना दो तो मैं हजार कदम पदम कदम तुम्हारे आगे आऊंगा। तुम एक संकल्प का हिम्मत रखो, एक संकल्प, वो हिम्मत का संकल्प रखो तो लाख पदम गुना में मदद करने लिए तैयार हूं। तो पहला कदम तो बच्चों का चाहिए, परमात्मा की मदद तो अवश्य मिलती है, लेकिन उनको मिलती है जो पहला कदम हिम्मत का रखते हैं। परमात्मा से प्राप्ति तो उनको मिलती है जो पहले अपना सब कुछ उनका समझते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं था, भले गाते थे लेकिन हमने तो यही सोचा कि बस वो ही मुझे देता जाए, मुझे भी कुछ देना है ये कभी नहीं सोचा, और यहां तक कह दिया कि भगवान मैं आपको क्या दूं, क्या दूं, मेरे पास है ही क्या जो मैं तुमको दूं। लेकिन बाबा कहते जो भी है वो भी तो हिम्मत रख के मेरे शिव बाबा का है, ये तो समझो पहले, उसमें तो मोह रख के बैठे हैं, उस पर तो अधिकार रख के बैठे हैं, उसको तो अपना समझ के बैठे हैं और फिर भगवान से मांगते ही रहे, धन दो, पुत्र दो, मकान दो, जमीन दो, नौकरी दो, धंधा दो, ये दो, वो दो, दो दो दो, यही करते रहे भक्ति मार्ग में। और किया क्या भगवान के सामने जाकर? कभी ये भी कहा कि बाबा भगवान ये भी लो, ये भी लो? अगर कहा भी ये विषय विकार है मेरे अंदर, ये भी कहा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ये भगवान को जरूर कहा कि मेरे विषय विकार को मिटाओ, मेरे पाप को हरो। लेकिन फिर कह दिया मैं तो पापी हूँ, मैं तो कपटी हूँ, मैं तो गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्बल हूँ। जितने हीन शब्द थे वही अपने लिए कहे और फिर कहा हे भगवान शक्ति दो। तो मांगते ही रहे, अपनी हीनता का वर्णन करते फिर शक्ति मांगते रहे। तो पाप भी हरो, दुख भी दूर करो, ये भी दो, वो भी दो, शांति भी दो, पर बाबा ये मेरा सब कुछ तेरा है ये नहीं कहा। इसीलिए वो ममत्व तो रहा ही जो अपना समझा था। और जैसे ही बाबा सृष्टि पर आते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को यही कहा, ये तन मन धन जो भी तुम्हारा है ये सब माताओं बहनों के आगे समर्पित कर दो। यही शिव शक्तियां बन के विश्व का उद्धार करेगी। और बाबा ने एक सेकंड में धक से स्वाहा किया, एक निश्चय हुआ, खुद को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, अपने कर्तव्य को पहचाना, अपनी जिम्मेदारी को पहचाना बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, और एक धक से सब स्वाहा। फिर आगे कुछ नहीं सोचा। तो बाबा तो कोई ऐसे नहीं कि हमसे ले लेते हैं। बाबा कहेंगे मैं लेके क्या करूंगा, मुझे न यहाँ मकान बनाने हैं, न मुझे महल बनाना है, न मुझे कोई बैंक में जमा कराना है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अकर्ता भोक्ता हूँ, मैं तो खाता पीता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, न मुझे अपनी कोई देह है जो देह के लिए मुझे चाहिए, शिव बाबा को तो नहीं है। तो जब ये पता है और बाबा कहते हैं, फिर भी बच्चे हृदय विधीरण होते हैं, क्योंकि वो निश्चय नहीं है। और निश्चय बैठ जाए, हो जाए, फिर तो एक धक से स्वाहा हो जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं प्राप्ति बहुत है, इसमें देना कुछ नहीं है, लेना ही लेना है, एक पाई देनी है, इतना ही देना है और इतना लेना है, सस्ता सौदा है, कुछ भी मेहनत नहीं है, मोहब्बत से चलना है। लेकिन होता क्या है, बाबा ने आज भी कहा ये माया बड़ी दुस्तर है, ये माया करने नहीं देती है। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल एकदम संशय बुद्धि बन जाते हैं, और जितनी भी कमाई की वो सब खत्म, पानी फिर गया। फिर भी बाबा कहते जाएंगे कहाँ, घूम फिर करके अंत में थोड़ा पश्चाताप होगा जरूर, फिर भी आएंगे जरूर, क्योंकि आखिर तो हट्टी एक ही है। तो इसीलिए इतना समय श्वास संकल्प शक्ति हमारा व्यर्थ जाए और फिर अंत में रियलाइज हो, उसके बजाय तो अभी कर ले। और समय की कमी के कारण हर चीज को सफल करना है, हर चीज सफल करनी है। अभी सफल करने के भी तीन तरीके हैं। जैसे धन को हम सफल करना चाहते हैं तो तीन तरीके हैं। एक तरीका है कि हम दान करते जाएं, दूसरों को देते जाएं। तो जितना दान करते हैं, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी दान करते थे, तो इसके रिटर्न में अगले जन्म में अच्छे धनवान के पास जन्म लेते हैं। ये दान की प्रक्रिया है, जो आवश्यक जिन जरूरतमंद है उनको देते हैं तो अवश्य इसका लाभ ये मिलता है कि रिटर्न मिलता है। तो सफल भी हुआ, वो किसके कार्य में भी लगा, उसकी दुआएं भी मिली और साथ साथ रिटर्न भी मिला। ये एक तरीका है सफल करने का। और दूसरा तरीका होता है व्यर्थ न गंवाने का, ये भी एक तरीका होता है। जितनी बचत की व्यर्थ नहीं गंवाया तो ये भी सफल ही माना जाएगा, क्योंकि नहीं तो व्यर्थ चला जाता था। जैसे कोई सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, तंबाकू खाते या पीते, शराब पीते, कितना उसमें धन व्यर्थ जाता है। और जैसे बाबा के बनते हैं, इनसे तो बचत हो ही जाती है, वो खर्चा तो कम हो गया। तो ये बचत करना, ये भी सफल करना है, क्योंकि उसका सद उपयोग हम करेंगे, नहीं तो दुरुपयोग हो रहा था। तो एक है दान करने से सफलता मिलती है, दूसरा बचत करने से सफलता मिलती है, और फिर तीसरा भी एक रास्ता है कि ज्यादा कमाने से, मेहनत की तो सफलता मिली। जैसे कई नौकरी करते हैं, तनख्वाह तो मिल रही है, परंतु फिर और पढ़ाई भी करते, पढ़ते जाते डिग्री लेते हैं तो प्रमोशन होती जाती है, और प्रमोशन होती जाती है तो जरूर तनख्वाह बढ़ती है, तो वो भी प्राप्ति है, वो भी सफलता है। तो मेहनत करके पढ़ाई की और उससे जो पाया वो एक प्रकार की प्राप्ति है, वो सफलता है। और दूसरा है कि दान पुण्य किया, हाथों से तो गया लेकिन वो सफलता में ही आएगा, क्योंकि जरूरतमंदों को मिला, उसकी दुआएं जो मिली वो हमें शांति देगी, खुशी देगी, सफलता देगी। और तीसरा है कि जो व्यर्थ जा रहा था उसको बचा दिया, तो बचा दिया तो वो भी तो सफलता हुई, वो भी तो प्राप्ति हुई। अब बाबा भी हम बच्चों को जो हमको जो इतना खजाना बाबा देते हैं, कम खर्च बाला नशीन, खर्चा भी कम हो और सफलता भी अधिक मिले। और उसके लिए हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या सोचना है, किन बातों पर ध्यान देना है। तो पहली बात, जैसे वो पढ़ाई पढ़ते जाते हैं और प्रमोशन होती जाती है, डिग्री मिलती जाती है, एक सफलता है। तो बाबा कहते हैं कि अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, ज्ञान रत्नों को इकट्ठा करने में लगाओ, तो देखो कैसे आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। और संसार की बातें सुनना, पर चिंतन करना, इधर उधर की वायात बातें सुनकर टाइम वेस्ट करना, उसके बजाय फ्री बैठे हैं, चलो मुरली ले लो हाथ में और पढ़ो, फ्री बैठे हैं चलो ज्ञान अमृत पढ़ लो, कोई अच्छी अच्छी बातें पढ़ो। बाबा के ज्ञान रत्न बहुत तरीके से मिलते हैं। तो जितने जितने ज्ञान रत्न बुद्धि में होंगे, वैसा ही फिर मन में चिंतन भी चलेगा, और जैसा चिंतन चलेगा वैसा ही फिर देंगे दूसरों को भी, तो मेहनत भी कम और सफलता भी ज्यादा, क्योंकि बुद्धि व्यर्थ में गई नहीं। नहीं तो हम देखते हैं दुनिया में लोग काम इतना नहीं होता, लेकिन कैसे अपने आप को समझते मैं तो बहुत बिजी हूं, जबकि कोई इतना काम भी नहीं होता है, क्योंकि वो सब वेस्ट करते रहते हैं अपना समय, श्वास, संकल्प, समय, शक्ति सब वेस्ट करते हैं। और यहां बाबा कहते हैं तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है, इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हर चीज आपकी बहुत कीमती है, इसका रिटर्न आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे दुनिया में भी कई वेस्ट चीजें होती है, लेकिन वो वेस्ट को भी बेस्ट बनाते हैं, है ना? ऐसे कूड़ा किचरा ये भी बहुत होता है, लेकिन उसमें से फिर कागज बना देंगे, उसमें से क्या क्या बना देते हैं, वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं। तो ये जीवन अगर हमारी यूं ही व्यर्थ गई तो ये जन्म तो जाएगा ही, लेकिन अगले जन्म भी, आगे के जन्म भी व्यर्थ ही जाएंगे, वो भी नहीं कोई श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए मेरा हर श्वास, संकल्प, समय, घड़ी ये व्यर्थ न जाए, उसके लिए क्या हम करें, ज्ञान रत्नों को अपने अंदर भरते जाएं, भरते जाएं, क्योंकि आत्मा बहुत प्यासी है। ये कभी न समझे कि मैं तो सबको जानता हूं, कभी न समझे, हर समय हमें सीखना ही है, सीखना ही है। शिक्षा प्राप्त करने की कोई आयु लिमिट नहीं होती है, हर घड़ी हम सीखते हैं, केवल बड़ों से ही नहीं सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं, समान से भी सीखते हैं। तो अगर सीखने की ये कला होगी तो कितना हम अपना जीवन सफल कर सकेंगे। फिर दूसरी बात, व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसके लिए जैसे बताया भाई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, उसमें कितना धन वेस्ट जाता है। तो बाबा कहते हैं जब भी आपका समय, श्वास, संकल्प कुछ भी बात में व्यर्थ जा रहा है, तुरंत उसको ब्रेक लगाओ। ये ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, गाड़ी को भी ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, उसकी ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए, तभी बड़े बड़े एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। पर समय पर ब्रेक नहीं लगा सके तो जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर कितना भी पश्चाताप करो लेकिन फायदा क्या। तो बाबा भी कहते अगर समय आपका जा रहा है, व्यर्थ सोच चल रहे हैं, क्योंकि अगर सफल नहीं है तो वेस्ट है, दोनों बातों में से एक ही बात है, या तो सफल है या तो व्यर्थ है। तो अगर व्यर्थ में जा रहा है, एक सेकंड में उसको ब्रेक लगाओ, नहीं नहीं, ये नहीं उसकी ब्रेक है। कई बार नहीं भी लगा कहते हैं तो भी जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर मन खाता है, बहुत कुछ ऐसा कर लिया तो हम चाहते हम नहीं सोचे, लेकिन पश्चाताप के भी आंसू आते हैं। कई बार किसी ने धोखा दिया तो मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, ये भी सोच चलता है, माफ भी नहीं करना चाहते हैं, भूल भी नहीं सकते हैं, ऐसे भी सोच चलते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं ड्रामा का भी फुल स्टॉप लगा सको, इसलिए ड्रामा की ढाल भी इतनी मजबूत हो जो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो, जैसे अटैक से बच गए। पहले जमाने में योद्धे होते थे, वो कवच पहनते थे, हाथ में ढाल होती थी, बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में तलवार, तो तलवार होती थी लड़ने के लिए और ढाल और कवच बचाव के लिए। इसी प्रकार अगर समझते हो कि फ्री है, कुछ नहीं है, तो सफल कैसे करें, तो ज्ञान रत्न को जमा करो। ये तलवार आपने यूज की, ज्ञान रत्न जमा किए, उसको शार्प किया अपने ज्ञान रत्नों को, जैसे तलवार को तेज करते हैं, तेज नहीं किया तो अगर वो ब्लंट है उसमें ताकत नहीं है तो आप ज्ञान तलवार यूज भी नहीं कर सकेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। आज भी कल भी बाबा ने मुरली में कहा, कोई नए नए आते हैं अच्छे इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति, उनको कोर्स कराना है या ज्ञान सुनाना है, अब कोई नया आ गया तो उसको तो आएगा नहीं समझाना ठीक ढंग से, कोई प्रश्न पूछेगा तो उसको जवाब देना भी नहीं आएगा, तो फिर आबरू गवाएंगे, कहेंगे अरे इनके पास तो सारे ऐसे ही है। इसीलिए कोई अच्छा और समझदार है उनके सामने समझाने वाला भी अच्छा चाहिए, परंतु कौन अच्छा समझा सकेगा जिसके पास ज्ञान रत्नों का स्टॉक होगा, तभी तो बता सकेगा, नहीं तो कैसे बता सकेगा। अभी किसी ऐसे गैर ऐसे किसी को कहो जाओ भाषण करो, कहेगा मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, क्योंकि ये बुद्धि में ज्ञान रत्न भरे हुए नहीं है, इसलिए क्या बोलूं क्या बोलूं, थोड़ा झिझकेगा, थोड़ा नर्वस हो जाएगा, चलो एक शब्द बोलेगा फिर भूल जाएगा, क्योंकि अपना समय श्वास संकल्प शक्ति उसमें नहीं दिया है ना, व्यर्थ में बहुत समय गंवा दिया है, तो स्टॉक जमा है ही नहीं, तो बोलेगा भी कैसे। तो इसीलिए भरपूर भी होना है ज्ञान रत्नों से, दूसरा एक सेकंड में फुल स्टॉप भी लगाना है, ड्रामा के ज्ञान से, आत्मा आत्मा भाई भाई के ज्ञान से, एक बाबा के हम बच्चे हैं इस ज्ञान से बिंदु लगाना भी आना चाहिए, क्योंकि अंत में तो बिंदु लगाना ही पड़ेगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, सारा जीवन तो भगवान को याद किया ही नहीं, अब जब अंत की घड़ी आई है तो उनको कहते भाई अभी भगवान को याद करो, राम राम याद करो, तो चलो कोई तो समझ जाते हैं कि अभी मरने की घड़ी आई है, अभी और तो सब छूटना है, इसीलिए भगवान को याद करो, और कोई तो बिल्कुल घबरा जाएंगे उस समय, क्योंकि और बातें याद आ जाएगी, भगवान कहाँ याद आएगा। बाबा ने अपने बच्चों के लिए भी आज कहा, बाबा के बने बहुत कुछ धारणा की, बहुत कुछ किया, फिर माया ने वार किया, छोड़ के चले गए, पर अंत में फिर याद आएगा, कहाँ जाएंगे, याद आएगा कि हमने इतना बाबा से पाया था, इतनी पालना ली थी, इतनी मुझे प्राप्ति हुई थी, तो फिर आएंगे कहाँ जाएंगे, अंत के समय जब देखेंगे अब तो सब रास्ते खत्म, तो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए अभी ही वो समय है अपने श्वास संकल्प शक्ति की बचत के लिए फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए ड्रामा की ढाल और योग का कवच ये हर वक्त पड़ा रहे, जब भी कोई ऐसी बात सामने आ जाए, ड्रामा बिंदु लग गया, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि व्यर्थ में कितने प्रश्न चलते ही रहते, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, क्या क्यों कहाँ कब कैसे कौन, इस बस वो प्रश्न ही प्रश्न मन में चलते और व्यर्थ जाता रहता, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं, और बात पूरी हो गई तो खत्म, बस बिंदु लग गया। ये भी एक बचत का खाता है, ये भी कम खर्च वाला नशीन है, क्योंकि वो समय श्वास संकल्प शक्ति को हम सेवा में लगा सकते हैं, सफल कर सकते हैं, नहीं तो व्यर्थ सोच में चला जाता है। तो योग का कवच पड़ा रहे, बस चलो बाबा की याद में, ये क्यों नहीं ऐसे हो रहा, ये विघ्न आया फलान, चलो छोड़ो, चलो बाबा को याद करो, बाबा मदद करेगा। पर जैसे ये सोचा, बाबा के कमरे में गए, बाबा मदद करेगा, देखो कैसे कार्य सफल हो जाता है। ड्रामा कह करके मन बुद्धि को बिंदु दे दिया, अंतर में शक्ति आ गई, और वो जो शक्ति आई ना, तो परिस्थिति का आप सामना सहज कर सकेंगे। परंतु क्या, क्यों, कहां, कौन, कैसे, उसमें समय चला गया, शक्ति चली गई, श्वास चला गया, तो वो विघ्न इतना छोटा रूप और बड़ा रूप बन के आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन माना, अपने संकल्प को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सको, फिनिश, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। कई बार ऐसे होता है कि क्षमा तो कर देते हैं, क्षमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा दिल चाहिए क्षमा करने के लिए, कई तो वो भी नहीं कर पाते हैं। चलो क्षमा कर दिया, बड़ा दिल रखा, परंतु भूल नहीं सकते हैं, वो बात जो हुई ना, जो उनको दुख की मिली, वो भूल नहीं सकते हैं। और भूल नहीं सकना भी क्षमा नहीं करना है, ऐसे नहीं क्षमा तो कर दिया बदला नहीं लेंगे चलो, पर भूल नहीं सकना भी क्षमा नहीं करना है, क्योंकि चलो उसको तो क्षमा कर दिया, पर खुद को जो उसमें दुखी बना रहे हैं, क्योंकि भूल नहीं सकते हैं, वो अपने को जो दुखी बनाया, ये खुद को क्षमा नहीं कर सकते, उसको तो कर दिया क्षमा। इसलिए खुद को भी क्षमा करना है, इसलिए भूलना ही पड़ेगा। और उसी में आत्मा का कल्याण है, नहीं तो कितना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति व्यर्थ जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, व्यर्थ से बचाना है अपने आप को। आज भी बाबा ने कहा, हर घड़ी चेकिंग करो, चेकिंग और चेंज। आज भी बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर मन कहीं भटकता है तो खुद को सजा दो। ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे, बाबा भक्ति में थे ना, तो बाबा माला जपते थे, जाप करते थे, तो माला हाथ में होती थी, विष्णु का ध्यान करते थे, कोई मंत्र जाप करते थे, या पठन पाठन कोई भी शास्त्र पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, या ध्यान में बैठते थे, तो अचानक उनकी बुद्धि कहीं और चली जाती थी, तो एकदम से बाबा को सावधान करने, अपने को सावधान करने लिए बाबा क्या करते थे, ऐसे चपट मारते थे, अपने को थप्पड़ मारते थे, हे मन तुम कहाँ चला गया, या चूटी मारते थे, जो मारते ना चूटी, क्या बोलते हैं, पिंच करते हैं, तो एकदम से जैसे ख्याल आ जाता है कि ये कहाँ मैं बहक गया। तो अपने आप को बाबा सावधान करते थे, भक्ति में भी, ज्ञान में तो और भी सावधान करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है ये। इसीलिए बाबा कहते हैं, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, और यही पुरुषार्थ है हमारा। फुल स्टॉप लगाओ और ड्रामा की ढाल पकड़ो और योग का कवच पहन के रखो, तो सहज ही आप व्यर्थ से बच जाओगे। और तीसरी बात जो बताया, सफल करना माना, हर श्वास, हर संकल्प सेवा में लगे, सेवा में लगे, व्यर्थ न जाना, ये भी सफलता है, पर सेवा में लगना और ज्यादा सफलता है। मैंने अपना धन किस खाते में लगाया, क्योंकि ये भी लिमिटेड है, ये कोई अनलिमिटेड तो नहीं है, जीवन भी लिमिटेड है, हमारा श्वास भी लिमिटेड है, समय भी लिमिटेड है, तो किस खाते में गया वो। जैसे मान लीजिए किसी के पास धन की कमी है, ज्यादा धन नहीं है, तो कैसे वो धन यूज करेगा। दादी जी अपना बहुत सुंदर मिसाल देती थी, यज्ञ को कैसे चलाते हैं, क्योंकि सब भाई बहने मिल करके यज्ञ चलाते हैं, धन की सेवा सब मिल करके करते हैं, तब इतना बड़ा कारोबार है, इतना खर्चा होता होगा, पर मान लीजिए थोड़ी धन की कमी है, अब मकान भी बनाना है, साथ साथ ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, नौकरों का खर्चा है, इतना बड़ा घर है, सफाई चाहिए, ये चाहिए, वो खरीदारी चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अभी लिमिट है धन की। तो दादी जी कहती थी किसमें हम कटौती करें, किसमें कटौती यानी किसको कम करें, कंस्ट्रक्शन को भी कम करें या ट्रांसपोर्ट को कम करें या नौकरों को कम करें या खाने पीने किचन का भोजन उसमें भी कितना खर्चा है, किसको कम करें, कुछ को तो कम करना पड़ेगा क्योंकि उसी बजट में उसको ढालना है, उसी बजट के अंदर ही करना है, तो कौन सा खाते में कम करें। तो दादी जी कहते थे जो किचन की बात है उसमें कम नहीं करना है, क्योंकि बाबा के इतने बच्चे आते हैं, इतने बच्चे आते हैं तो बच्चों को तो पेट भर खाना तो मिलना ही चाहिए, उसमें कमी नहीं करनी है। हाँ, दो सब्जी के बजाय एक सब्जी बना लो, हाँ वो भले करो, पर आज खाना ही नहीं पकेगा क्योंकि बजट में कमी है, ये तो नहीं करेंगे ना, ये नहीं करेंगे। भोजन तो देना है क्योंकि पहले तो बाबा को भोग लगाना है तो बाबा को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे, तो उसमें तो दादी जी कभी कमी नहीं करते थे। तो किसमें कम करें, हाँ तो कहेंगे कि हाँ ट्रांसपोर्ट में भी कमी नहीं कर सकते, इतने बच्चे आते हैं, इतनी बसें हैं, इतने ड्राइवर्स हैं, इतना पेट्रोल डीजल क्या नहीं खर्च होता होगा, ये सब चाहिए, उसमें भी कमी नहीं। हाँ थोड़ा कम करें भाई, चार जने एक ही गाड़ी में अलग जाए तो चार जने एक ही गाड़ी में बैठ के जाए, कमी कर सकते हैं। अच्छा नौकर इतने हैं चारों ओर, उसमें कमी थोड़ी कर सकते हैं, चलो इतने चार नौकर की बजाय दो नौकर रख दो और बाकी खुद भी तो कुछ करो, खाली नौकरों के सहारे थोड़ी रहना है, खुद भी करना है। तो कहाँ उसको कटौती यानी कम करें, कहाँ उसको उसको बचत करें, वो देखना होता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं किसमें बचत करो, जो तुम्हारा फिजूल खर्च हो रहा है उसमें बचत करो, पर जहाँ सेवा करने की बात है वहाँ खूब लगाओ, पैम्फलेट बांटो, पर्चे बांटो, उसमें कोई कंजूसी नहीं करो। आज तो बाबा ने कहा एरोप्लेन से भी बांटो, क्या पता किसको जीवन दान मिल जाए। तो ये करते थे मेलों में, करते हैं हेलीकॉप्टर से नीचे पर्चे बांटते हैं, नहीं तो एक एक को कहाँ बांटेंगे, तो हेलीकॉप्टर से गिराते तो एक एक को हाथ में मिल जाता है। तो एक भाई था, उसने अपना अनुभव सुनाया, बड़ा सुंदर अनुभव सुनाया। वो उसने कहा कि एक जगह मेला लगा हुआ था, अभी उसको तो पता नहीं था, वो बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति करता था, लेकिन उसको कोई शांति नहीं मिलती थी। उसको यही बुद्धि में था बस मुझे भगवान का एक बार दर्शन हो जाए, बस दर्शन हो जाए। कहाँ कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ मंदिरों के परिक्रमा नहीं की होगी, सब जगह गया। तो एक दिन बहुत थक गया तो अपने टेरेस पर वो टहल रहा था, अपने मकान के टेरेस पर वो टहल रहा था और भगवान को कह रहा था, हे भगवान आज अगर तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे, आज अगर मुझे कुछ अनुभूति नहीं कराओगे तो मैं तो अपने आप को मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, हत्या कर दूंगा, अपनी आत्महत्या कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। आज आपको मुझे हर हालत में दर्शन कराना ही है, बस भगवान से बातें कर रहा था। तो क्या हुआ, वहां उस समय मेला लगा हुआ था इसी शहर में, तो हेलीकॉप्टर से पर्चे गिरा रहे थे। अब वो पर्चा जो था वो इसके टेरेस पर गिरा और बिल्कुल उसके पैर के पास ही आकर के गिरा। उसको लगा ये क्या गिरा है ऊपर से, तो जैसे पैर वहां गिरा तो वो झुक करके वो पर्चा उठाया और पर्चे में क्या पड़ता, ईश्वरीय निमंत्रण, ईश्वरीय निमंत्रण, भगवान ने निमंत्रण दिया है। वो कैसा निमंत्रण होता है, भगवान का निमंत्रण का मतलब क्या है। वैसे अगर भगवान का निमंत्रण आता है माना मरने का निमंत्रण होता है क्योंकि भगवान के पास कब जाते हैं? मरने के बाद ही जाते हैं, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, यही कहते हैं ना। स्वर्ग भी कैसे मिलेगा, मरने के बाद ही कहते स्वर्ग पधारा। तो मरने के बाद ही भगवान मिलता है या स्वर्ग मिलता है? अब ये ईश्वरीय निमंत्रण, वो तो तैयार था मरने के लिए, पहले से ही तैयार था, तो पढ़ने लगा। और पढ़ करके उसको पता चला कि वहां पर मेला लगा हुआ है किसी स्थान पर, अब भगवान ने निमंत्रण दिया है ये मेला देखने के लिए आओ। तो गया, और जैसे गया और सब सुना, और फिर उसको वहां जो मेडिटेशन रूम बनाया था वहां पर बिठाया, और जैसे बैठा बाबा का चित्र सामने था, बस दृष्टि लेता गया शिव बाबा का बिंदु रूप, वो लाइट का वो उसके सामने आया, बस उसको देखा, तुरंत उसको साक्षात्कार हो गया, ज्योति का साक्षात्कार हो गया। अरे इतना सुंदर उसको अनुभव हुआ, बस का मुझे भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवान ने दर्शन दे दिए, हाँ भगवान अब मैं तेरा हो गया। तो कहाँ वो मरने जा रहा था और कहाँ भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। तो देखो, तो कैसे उसका जीवन सफल हो गया। अब वो अगर मेला हम लोग नहीं करते या वो हेलीकॉप्टर का खर्चा नहीं करते, मानो कि बनी खर्चा होगा, ये करेंगे खर्चा होगा, तो वो उस आत्मा की सेवा कैसे होती? कौन उसको पर्चा देने उसके मकान में जाता है? ऐसे तो नहीं जाते, पर ये ऊपर से गिरा आकाश से जैसे गिरा, तो उसकी सेवा हो गई और वो बाबा का बच्चा बन गया। तो इसीलिए इस खर्चे को खर्चा नहीं समझते हैं, इस खर्चे को सफलता समझते हैं। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि समझो आपके पास कोई छोटी छोटी किताबें हैं, अब आप दूसरों को बांटते हो, वो कहेगा ये कितने की किताब है? आप कहेंगे कोई बात नहीं, आप ले लो, आप ले लो, आपको हम दे रहे हैं, आप पढ़ना बहुत अच्छा है, फ्री है, आप ले लो। तो वो कहेगा नहीं नहीं इसकी कीमत कितनी है? तो आप उसको कहो कि देखो इसकी कीमत तो अनगिनत है, इसकी कीमत तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन भगवान ने इसको फ्री दिया है, पर अगर आप चाहते हो देना तो आपके ऊपर है कितना दो, ताकि हम और बना करके बांट सके, तो अब उसके ऊपर है। ये नहीं कि दो रुपए की है तो दो रुपया लेना है, वैसे फ्री सस्ती चीजें होती चलो फ्री बांटते हैं, कितनी चीजें फ्री बांटते रहते हैं, पर खर्चा तो हुआ होगा ना, बिना खर्चे का थोड़ी हुआ है। कई आते हैं विदेशों में तो कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, लेकिन हम लोगों के जितने भी प्रोग्राम विदेशों में होते कहीं की भी टिकट नहीं होती है, नो टिकट, यानी कोई टिकट लेकर के अंदर आना है प्रोग्राम में, ब्रह्मा कुमारियों के प्रोग्राम में कोई टिकट नहीं होती, लेकिन पासेस जरूर देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर हॉल 500 का है और 1000 आ जाए तो कहाँ बिठाएंगे, इसलिए उसकी लिमिट रखते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पर पैसा लेकर के नहीं कोई टिकट देते। तो लोग पूछते हैं कि आप लोग सब फ्री करते हो तो आपका खर्चा कैसे चलता है? यहाँ भी देखो, आप और सत्संगों में जाओ, सन्यासियों के पास जाओ, वहाँ भोजन ऐसे थोड़ी मिलता है, कई कोई तो फ्री लंगर उनका चलता है, लेकिन कई ऐसे जगह पर जाएंगे कूपन मिलेगा, वो पैसा देकर के कूपन लेना होता है तब जा करके भोजन मिलता है। लेकिन यहाँ तो पिता का घर है, पिता के घर में बच्चों को थोड़ी कोई पैसा दे करके कूपन लेना होता है, वो तो नहीं होगा, पिता के घर में तो बच्चे खाएंगे, और खाएंगे कितना, चलो 100 रुपए का भी खाया, पर 10,000 दे के गए तो ऐसे थोड़ी कि जितना खाया उतना ही दिया, वो तो 10 गुना 100 गुना ज्यादा भी दे सकते हैं। और कोई होंगे बेचारे गरीब होंगे जो नहीं भी दे सकते हैं, चलो खाया, पेट भरा, बाबा को याद किया, तो जिसने दिया सहयोग उसका उसका पुण्य बन गया, तो ऐसे चलता है। इसीलिए सेवा के खातिर अगर कुछ भी धन यूज होता है, तन यूज होता है, या कोई भी बात यूज होती है वो खर्चा नहीं है, वो वास्तव में सफलता है, क्योंकि उससे भी अनेक आत्माओं की दुआएं मिलेगी और उन दुआओं से हम पल रहे हैं। धन की सेवा सब कोई बड़ी सेवा नहीं है। मम्मा जब आई थी यज्ञ में तो कुछ भी नहीं लाई थी। मम्मा के जो फादर थे, पिताजी थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जैसे ब्रह्मा बाबा थे जौहरी, वैसे उनके पिता भी थे। लेकिन अचानक उनको उसने दिवाला मारा, सब कुछ खत्म हो गया, उनका कुछ भी नहीं रहा। अमृतसर में रहते थे, वो मकान भी उनको देना पड़ा, इतना सब कुछ यानी सब नष्ट हो खत्म हो गया, इतना दिवाला मारा। तो फिर वापस हैदराबाद सिंध आ गए और उनको सदमा पहुंचा, मतलब वहीं पर उनको अटैक आया, वहीं खत्म हो गए। धन भी गया तो उनका पिता भी गया, मतलब बहुत बड़ी दुख की बात थी। तो वापस आ गए हैदराबाद सिंध में, जहाँ उनको मकान तो था पर बिजनेस के खातिर अमृतसर में रहते थे हैदराबाद सिंध से। तो वापस जो उनका मकान था उसमें आए और वहाँ उनको ज्ञान मिला और बाबा के पास जैसे आए और बाबा उनकी माँ को बाबा से साक्षात्कार हुआ और दोनों माँ बेटी समर्पित हो गए। तो कुछ भी नहीं लाए घर से, जिस ड्रेस में मम्मा आई थी बस वही ड्रेस पहन के आई थी, कोई दो ड्रेस भी नहीं साथ में लाई थी, पर बाबा ने सब कुछ उनको दिया। तो कई कहते हैं कि मम्मा सरस्वती बन गई, भविष्य में लक्ष्मी बनेगी, पर धन से तो कोई सेवा की नहीं। लेकिन बाबा ने कहा भले खुद नहीं की पर कितनी सेवा की, और जिनकी सेवा की उन्होंने जो धन से सेवा की उनका एवजा मम्मा को मिला, है ना, क्योंकि इतनी सेवा की उन्होंने। तो कई कहते हैं धन से सेवा भी बहुत जरूरी है, परंतु कहाँ धन से सेवा कर सकते हैं, सभी तो कर नहीं सकते। अब जो समर्पित बहनी है वो कहाँ धन से सेवा करेगी, सेंटर में जो मिलता है वो ही उसी से पालना होती है उनकी। हाँ, विदेशों की बात दूसरी है। विदेश का भी संडे के दिन आपने मुरली सुनी होगी, विदेश के जो कई भाई बहने बहुत सेवा करते हैं, पर नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं, ट्रिपल काम करते हैं। भारत की बहने तो सेंटर पर जो रहती है वो कहाँ नौकरी करती है, कोई कोई करती होगी पर वैसे तो नहीं करती, जो स्टूडेंट्स है वही मदद करते हैं सेंटर को। पर विदेश में ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा कम हुआ, लेकिन उस समय दादी जी कहते थे जॉब भी करना है, नौकरी भी करनी, कम से कम अपना पॉकेट मनी, अपना खर्चा तो अपने कमाई से निकालो, वो सेंटर से मत लो। तो उसके लिए थोड़ा पार्ट टाइम जॉब भी भले करो, ताकि आपको इतना मिल जाए जो आपका अपना जेब खर्च तो चल सके, आपके पर्सनल यूज के लिए। तो कई वहां जो बहुत सेवा करते थे वो कहते थे दादी जी भारत में तो हमारी बहनें नौकरी नहीं करती है, समर्पित हो गई बस बाबा की सेवा में लगते, हमको क्यों कहते हो करने लिए, वो कहते थे। तो दादी उनको कहती देखो विदेश की बात दूसरी है, भारत की बात दूसरी है, विदेश में महंगाई बहुत है और महंगाई होने के कारण हर एक को जॉब करना पड़ता है, भारत में जरूरत नहीं है इतने, तो इसीलिए और सेवाएं बहुत है। हाँ, जब समय आएगा और आप इस सेवा में बहुत लग जाओगे तो अपने आप बाबा नौकरी छुड़वा देगा, वो चिंता नहीं करो, आप श्रीमत पर चलो, ऐसे नहीं कि क्यों हमसे नौकरी करवाते। अब भारत में इसका ऑपोजिट है, कई बहनें कहेंगे हम तो नौकरी करके अपने पांव पर ही खड़े होंगे। हाँ, समर्पित होना माना बंधन में आना, हम अपने पांव पर खड़े होंगे। लेकिन जो श्रीमत बाबा की मिले उस अनुसार करना है, श्रीमत से में ही कल्याण है ये समझ करके हम बाबा की सेवा करते हैं। तो इसीलिए जैसे बाबा की श्रीमत मिले उसी अनुसार हम करते हैं तो कितना ऊंचा भाग्य हमारा बनता है, और भाग्य बनाना हमारे हाथ में है। ऐसे भी कोई नहीं सोचे, कोई बात नहीं, ड्रामा अनुसार जैसे कलप पहले हुआ था वैसे होगा, वो तो हम जानते ही नहीं है ना। कई ड्रामा को पहले रखते हैं, पुरुषार्थ से पहले ड्रामा को रख देते हैं, पर ड्रामा को पहले नहीं रखना है। पुरुषार्थ जो किया उसमें अगर चलो सफलता नहीं मिली तो ड्रामा आप कह सकते हैं, उसमें भी सफलता है जरूर। सफलता क्या है? अनुभव तो बड़ा, अनुभव होना भी सफलता है। ये कोई नहीं समझे कि अनुभव तो क्या हुआ, सफलता तो मिली नहीं, पर वो अनुभव भी एक सफलता है, क्योंकि उस अनुभव से आपकी अंदर की शक्ति और बढ़ेगी सामना करने के लिए। इसलिए कभी मत समझे कि असफलता हुई, सफलता मिली नहीं, नहीं, हर कदम कदम में ब्राह्मणों के सफलता समाई हुई है। पर ये सफलता तब महसूस होगी जब पूरा ज्ञान हमको स्पष्ट होगा, और उस स्पष्टीकरण से, ड्रामा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से, कैसे समय को, श्वास को, संकल्प को, शक्ति को सफल करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, सेवा में लगा करके भी सफल करना है, बिंदु लगा करके भी सफल करना है, ज्ञान रत्नों को जमा करके भी सफल करना है, क्योंकि यही आत्मा के साथ जाएगा। हम बताते हैं ना अष्ट शक्तियों में, तो उसमें समेटने की शक्ति बताते हैं, तो समेटने की शक्ति में क्या दिखाया है, एक बिस्तरा है और दूसरी एक पेटी है, तो पेटी बिस्तरा गोल समेट लिया सब, अभी जा रहे हैं परमधाम वापस। तो समेटना, समेटने का अर्थ क्या है वास्तव में, जो आत्मा के साथ जाने वाली चीज है उसको अपने साथ रखना है, और जो शरीर के साथ खत्म होने वाली चीज है उसको खत्म करके और आत्मा के साथ जाने वाली चीज को अपने पास रखना है। तो आत्मा के साथ जाने वाली चीज क्या है? एक तो है हमारा मन, दूसरी है हमारी बुद्धि, तीसरे है हमारे संस्कार, और जब भी यात्रा पर जाते हैं तो ये तीन चीजें तो साथ में होती है। क्या होता है, पहले एक पर्स होती है, पर्स तो जरूरी है, हाथ में बहने पर्स लेती है ना, या हैंडबैग लेती है, वो तो बहुत जरूरी है, वो हैंडी बैग होती है, हैंडबैग, हैंडी बैग माना उसमें जब जो भी पूरा समय जो काम की चीज है वो हैंडबैग में रखते हैं, दवाइयां है, पानी है, खाना है, या पैसा है, कुछ भी है, विदेश जाते तो पासपोर्ट है, टिकट है, सब अपने साथ रखना होता है, ऐसे नहीं किसी और को दिया, वो अपने हैंडबैग में रखना होता है। फिर दूसरा होता है कि कैरी बैग, माना एक और बैग होता है थोड़ा छोटा सूटकेस जो ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसे होता है ना, उसमें उसको कभी कभी यूज खोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसे यात्रा में चाहिए, हर वक्त नहीं चाहिए पर फिर भी एक बार दो बार तो यात्रा में चाहिए, तो वो भी साथ में रखते हैं। लेकिन तीसरा होता है जो चेक इन लगेज, विदेश जाते हैं या कहीं भी फ्लाइट में जाते हैं या ट्रेन में भी जाते हैं तो एक बड़ा होता है वो सूटकेस, उसको खोलते नहीं है, क्योंकि जब डेस्टिनेशन जाएंगे, जब मंजिल पर जाएंगे तब जाकर के खोलेंगे, बीच में नहीं खोलेंगे, क्योंकि खोलना मना पता नहीं कितना निकल आएगा, तो उसको तो भरपूर रखते हैं ताकि वो बीच में न खोले। हैंडबैग तो बार बार खोलेंगे, छोटी बैग बीच बीच में एक दो बार खोलेंगे, और बड़ी वाली जो बैग है वो चेक इन लगेज, वो तो डेस्टिनेशन पर वो जो जहाँ पहुंचना होता वही मिलेगी, बीच में मिलेगी भी नहीं। चलो ट्रेन में जाते हैं तो भी इसको खोलते नहीं है, भाई नहीं नहीं इसको नहीं खोलना है, इसलिए काम का जो थोड़ा बहुत है वो छोटी बैग में रखते हैं। तो हम भी जब जाएंगे तो पैकअप करना है, मन बुद्धि संस्कार में क्या भरना है, वो आत्मा के साथ जाएगा। तो जो हैंड बैग है ना, जो हर वक्त हमको चाहिए, वो है हमारा मन। जो भी हम संकल्प करते हैं वो कैसे संकल्प हो, काम के संकल्प हो, ज्ञान युक्त संकल्प हो, सेवा के संकल्प हो, और उसमें भी बाबा कहते जिस समय जो संकल्प करना है उसी समय वही संकल्प चले। अगर समय अनुकूल नहीं है और हम संकल्प भले काम का संकल्प है पर वो समय उसके लिए नहीं है तो भी वो व्यर्थ के खाते में जाएगा, जरूर व्यर्थ के। अभी यहाँ बैठे आप सोच रहे हो मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरा फलाना आया होगा नहीं आया होगा, वो बच्चे क्या कर रहे होंगे, दफ्तर में क्या कर, अभी क्या फायदा ये सोचने से, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हो आप। सौंप के आ गए भाई हम आएंगे 5-6 दिन के बाद, अभी सोचने से तो फायदा नहीं होगा ना, इसलिए वो व्यर्थ में जाएगा भले कितना भी वो आवश्यक संकल्प है। तो बाबा कहते मन में क्या सोचो क्या रखो तो ज्ञान रत्न रखो, ब्रह्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, बाबा की मुरली की पॉइंट, ये बुद्धि में रखो तो कोई भी परिस्थिति आए तो तुरंत वो ज्ञान की पॉइंट यूज कर सको। ढूंढने कहाँ जाएंगे वो ज्ञान की पॉइंट, कौन सी मुरली में ये पॉइंट थी, देखो तो सही पढ़ू तो सही, उस समय टाइम कहाँ है। तो ज्ञान की पॉइंट्स आपके हैंडबैग में हो, माना मन के अंदर सदा फिक्स हो, हर वक्त आप उसको यूज कर सको कोई भी परिस्थिति में। फिर जो छोटा सूटकेस छोटा बैग जो राज यात्रा में बीच बीच में खोलते हैं वो आपकी बुद्धि है, तो बुद्धि में क्या भरो, गुणों का खजाना, इतने गुण भरपूर हो देखते रहो, हाँ मेरे अंदर सहनशीलता है, मधुरता है, सरलता है, ये सारे गुण मेरे अंदर है, उसकी चेकिंग करते रहो, बीच बीच में परिस्थिति आए तो वो उसको यूज कर सको, ताकि ज्ञान तो हर वक्त यूज करना है, गुणों को समय प्रति समय यूज करना है, वो भी आपके साथ ही हो, मन बुद्धि तो साथ ही रहे। फिर तीसरा है संस्कार, संस्कार जो आपने अपने कर्मों से बनाए हैं, तो कर्मों पर भी इतना ध्यान हो पर मुझे फल उन कर्मों का अभी मिल जाए ये नहीं सोचो, ये उस समय नहीं खोलो। जैसे होल्ड ऑल में क्या दे रहे, होल्ड ऑल, सब होल्ड, सब उसको डालते हैं, उसमें डालते जाते हैं जो हमको यात्रा में नहीं चाहिए, पर जब मंजिल पर पहुंचेंगे तब मिलेगा, तो वो हमारे संस्कार। तो वो संस्कार में हम क्या भरते जाएं, श्रेष्ठ कर्म भरते जाएं, श्रेष्ठ कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म ऐसे भरते जाएं, फिर ये पूछे नहीं मैंने इसको इतनी मदद की, इसने मुझे क्या मदद की, सोचो नहीं, वो आपके संस्कार में भर गया। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कितना ध्यान देना है, क्योंकि वो आदत बन जाएगी अगर वो रिपीटेड कर्म करेंगे गलत कर्म, तो कर्म अगर सही होंगे वो संस्कार भले बने पर गलत कर्मों के संस्कार तो न बने ना। तो इसीलिए वो संस्कार हमारे होल्ड ऑल में पड़ते जाए, अभी रिटर्न नहीं चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल, कहते ना एक कहावत है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करने के बाद सोचना नहीं होता है कि मैंने इतनी इसकी मदद की, मैंने इसको इतना सहयोग दिया, मैंने ये किया, आपका भाग्य बना। और नेकी के लिए ये भी कहा जाता है नेकी और पूछ, कोई अच्छा काम करना है तो 10 लोगों से पूछने थोड़ी जाएंगे, करूं ये करूं, अरे नेकी और पूछेंगे तो 10 लोग 10 बातें कहेंगे, नेकी का काम है करो, आपका भाग्य बन जाएगा, आपको आपका सफल हो जाएगा, सोचो नहीं। और वो समय पर किया तो सफलता ज्यादा मिलेगी, अब समय के बाद किया वो काम पूरा हो गया फिर आप सोचेंगे मैं करूं तो उतना नहीं मिलेगा, समय पर आवश्यकता के समय उस समय किया तो उसका 100 गुना मिल जाता है, और उस समय दाता बनो, मिल जाएगा, वापस आएगा, कहाँ जाएगा, भाग्य मेरा कहीं नहीं जाएगा, पर समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तो समय से पहले रिटर्न नहीं चाहिए और भाग्य से ज्यादा भी नहीं मिलेगा, पर उसके लिए पहले कर्म तो करो, तो भाग्य क्यों नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा मेरा भाग्य। तो देखो कम खर्च बाला नशीन, जीवन हमारा ये भी सफल और जन्म जन्मांतर सफल, बिल्कुल निश्चिंत होकर सफल करके आगे यात्रा करनी है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करें।